आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष जलवायु राजनयिक इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे इस साल के अंत में जब अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य की घोषणा करें तो वे उसे सबसे ऊपर और महत्वाकांक्षी रखें। लेकिन ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है और ये एकमात्र जलवायु संबंधी चुनौती नहीं है जिसका सामना ऑस्ट्रेलिया इस समय कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया को सितंबर में 2025 के लिए अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य की घोषणा करनी है। ऐसे में साइमन स्टेल, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष जलवायु राजनयिक की ऑस्ट्रेलिया यात्रा एक बेहद महत्वपूर्ण समय पर हो रही है। सिडनी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मुद्दा केवल ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा है।
ऑस्ट्रेलिया हैज अ स्ट्रांग इकॉनमी एंड अमंग द हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द वर्ल्ड। इफ यू वांट टू कीप देम, doubling down on clean energy is an economic no-brainer.
साइमन स्टेल की ये अपील कोई नई बात नहीं है। वे दुनिया भर की सरकारों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे जलवायु परिवर्तन को लेकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करें। लेकिन उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से संवेदनशील है और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो जलवायु परिवर्तन देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई घरों को जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण हर साल सामूहिक रूप से लगभग $4 अरब का नुकसान हो रहा है। भविष्य को लेकर उनकी चेतावनी और भी गंभीर है। वे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया की विशाल खाद्य उत्पादन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। उनका दावा है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो देश को 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद में $6.8 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इस बीच क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी, जिसकी अगुवाई न्यू साउथ वेल्स सरकार के पूर्व मंत्री मैट कीन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को सलाह देने की प्रक्रिया में है जो तय करेगा कि अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए। इससे पहले अथॉरिटी ने 2005 के उत्सर्जन स्तर की तुलना में 65-75% की कटौती का संकेत दिया था। मैट कीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब दुनिया में नेतृत्व करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
It needs to be ambitious to grab the economic opportunities that Simon so eloquently outlined. We need to make sure that we're leading the way if we're going to develop the industries that are going to underwrite our prosperity into the future.
2035 के लिए कार्बन कटौती लक्ष्य का निर्णय पहले ही कई महीनों से टल चुका है। मैट कीन का कहना है कि ये देरी जरूरी थी ताकि जो अंतिम निर्णय लिया जाए वे पूरी तरह से सही और देश के हित में हो।
We've taken the time to the deep, thorough analysis required so that when we stand up, when the government stands up, we can do so saying that this number is in our national interests. So I'm not going to apologise for taking the time and building the evidence required to get the decision right.
मैट कीन का कहना है कि उनके पूर्व राजनीतिक पक्ष के लोग, जैसे कि नेशनल पार्टी के पूर्व संघीय नेता बार्नबी जॉयस, जो नेट जीरो लक्ष्यों को खत्म करना चाहते हैं, आज की हकीकत से कटे हुए हैं और इसके सबूत के तौर पर वे हालिया संघीय चुनाव परिणामों की ओर इशारा करते हैं। वहीं बार्नबी जॉयस का कहना है,
It's just a swindle and it works on the most like all swindles. It finds the virtue in people who want to do the right thing. And then just start ripping them off blind.
कोएलिशन के बैकबेंचर सांसदों का एक समूह जिसमें नेशनल्स के मैट कैनवन, कॉलिन बॉयस और माइकल मैककॉरमैक और लिबरल सांसद गर्थ हैमिल्टन शामिल हैं, का तर्क है कि नेट जीरो प्रतिबद्धता बिजली की लागत बढ़ा रही है, क्षेत्रीय उद्योगों जैसे कि खनन, धातु और विनिर्माण को नुकसान पहुंचा रही है और क्षेत्रीय समुदायों को विभाजित कर रही है। ये समूह आधिकारिक चुनाव पश्चात समीक्षा पूरी होने से पहले ही नीति में बदलाव के लिए दबाव बना रहा है। वहीं विपक्ष की नेता सुजैन ले किसी अंतिम ऊर्जा नीति की घोषणा को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही।
We have the time to get energy policy right.
लेकिन इस समय जलवायु परिवर्तन से जुड़ा ये अकेला विवाद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच इस बात को लेकर टकराव चल रहा है कि अगले साल होने वाला संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP 31 कहा जाता है, कौन होस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया 2026 में यह सम्मेलन एडिलेड में आयोजित करना चाहता है ताकि वह दुनिया को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा में हो रही प्रगति दिखा सके, लेकिन तुर्की इस दौड़ से हटने को तैयार नहीं है। उसका तर्क है कि उसका स्थान भूमध्य सागर क्षेत्र में है, जिससे सम्मेलन में आने जाने से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सकती है। साइमन स्टेल का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया और तुर्की आपस में इस मुद्दे को सुलझाएं, क्योंकि ये विवाद आयोजन की योजना को नुकसान पहुंचा रहा है।
Our position is, please work amongst your peers and resolve this quickly so that we can engage whomever is the successful candidate so that we can all move the process forward.
गौरतलब है कि अब स्टेल कैनबरा की ओर रवाना होंगे, जहां वे ऑस्ट्रेलिया के संघीय जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन से मुलाकात करेंगे। एसबीएस न्यूज से सुनील अवस्थी, जॉर्जिया मार और रानिया येलोप की ये रिपोर्ट पेश की गई है एसबीएस हिंदी के द्वारा।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।